ओम शांति। 19 नवंबर 2023 आज की अव्यक्त मुरली है। मधुबन सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुरानी व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। पुरानी व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। ये बाबा ने मुरली चलाई 3 अप्रैल 1996 मधुबन। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे। बेहद का बाप सदा सहयोगी, वो भी बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं और चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर तिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। शिव बाबा के पास दिल तख्त नशीन, मतलब बाबा के जो बोलते हैं सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। कहां बैठे, लेकिन तुम बच्चों के कितने तख्त हैं? सबके पास अपने अपने कुर्सी है ना, ये शरीर है ना। शिव बाबा के पास तो बैठने के लिए कोई शरीर भी नहीं है, ऊपर परम धाम में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है उसके लिए। सिर्फ हमारे साथ बात करने के लिए इसकी कुर्सी को हिस्सा कर लेता है, शेयर कर लेता है, इसकी कुर्सी पर इसके साथ बैठ जाता है। बाकी मर्जी करे किसी भी कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए बैठकर अपना काम कर लेता है। अपनी कुर्सी नहीं,
अपनी
नहीं। इसका कोई माँ बाप भी नहीं है, तो इसको हम आर्फन कह सकते हैं कि नहीं? इसको हम अनाथ कह सकते हैं कि नहीं?
इतना बड़ा परिवार है।
नहीं, परिवार तो होगा, बाप तो नहीं है ना। आत्माओं का तो परिवार है, परंतु इसका कोई बाप नहीं है। जिसका कोई माँ बाप नहीं होता उसको अनाथ कहते हैं ना, आर्फन कहते हैं ना। अब ये हाँ जी, चलो। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? सबके पास अपना अपना शरीर है, 84 शरीर भी ले लेते हो बदल बदल करके। ये शरीर खराब हो गया, चलो दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वहां मेरे तख्त नशीन बच्चे और बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष, हर एक बच्चा क्या है? विशेष आत्मा है, चाहे लास्ट नंबर भी है, चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष। कोटों में कोई, कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है। वह आपको, बाप को ज्यादा खुशी है या आपको?
दोनों को ही।
बाप को कितने बच्चे हैं? बाप को कितने बच्चे हैं?
तीन बच्चे।
जितने बच्चे उतनी खुशी, बेहद के बच्चे और बेहद की खुशी। बच्चों को गिनती नहीं कर सकते ना, बेहद में सारे बच्चे और खुशी भी बेहद की, और हमारे बच्चे थोड़े तो हमारे को खुशी भी थोड़ी। ये तो रिस्क करनी पड़ेगी बाबा के साथ। बच्चे उतनी खुशी और आपको सिर्फ डबल खुशी, गलत है ना बात? उसको बेहद की खुशी और हमें सिर्फ मेरे और शिव बाबा डबल खुशी। आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी कभी? पूछ रहे हैं। कभी नीचे कभी ऊपर, कैसी होती है खुशी? बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है?
खुशी।
खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी, कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए
खुशी ना,
लेकिन खुशी नहीं जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले, पास विद ऑनर। कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी, धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले एक सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। एक सेकंड बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। अब ये लाइन, एक सेकंड के लिए क्या करने जाना है परमधाम? सच है कि झूठ है? बाबा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है?
सच्ची बोल रहा है बाबा, सारी बात सच बोल रहा है।
झूठ बोल रहा है सवेरे सवेरे, और क्या? देखिए, एक सेकंड में वहां जाके क्या करने के लिए जाना है भाई? एक साल के लिए जाना है। एक साल भी एक सेकंड का होगा। कैसे होगा एक साल एक सेकंड का?
पता ही नहीं चलेगा।
सो गए बस, जागे तो एक सेकंड हो गया, खत्म बात। आप 10 घंटे सो जाओ, आप 20 घंटे सो जाओ,
पता ही नहीं चलता,
वो काउंट ही नहीं होता। 4999 साल वहां रहने वाली आत्मा भी ऐसे आएगी जैसे अभी ही गई थी, क्योंकि वहां ना देखना, ना बोलना, ना सुनना, ना कोई काम, ना धाम। उसे भी क्या लगेगा? जैसे अभी आई थी और अभी बाय की सेकंड में वापिस आ गई। एक साल में धरती फिजिकल है, इसमें सारा कुछ सेट हो जाएगा, इसी में वो पिघलेगी भी सही, खतर जमेगी भी सही, सेट भी होगी, सब कुछ हो जाएगा, एकदम 100% प्योर धरती तैयार
हो जाएगी।
अब कई भाई बहन मुरली को यही पढ़ के कहेंगे बस हम जाएंगे और आ जाएंगे। अरे भाई आपके जन्म 83 है, आप कैसे जाओगे और आ जाओगे? आप तो 150 साल तक वहां बैठे रहोगे, आप 500 साल तक वहां बैठे रहोगे। बाबा ने कह दिया, बाबा ने उन आत्माओं को कहा जो 100% बनेंगे, जाएंगे और आ जाएंगे। आएंगे तो सारे ही एक सेकंड में, पता नहीं लगेगा, परंतु ड्रामा अनुसार
नंबर वार।
तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले, ऐसा चार्ट है जो आप साथ चलो? ऐसा चार्ट है, साथ चलो, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभाश है, वे तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, ये बाबा भगत बच्चों से बात कर रहे, क्योंकि वो इतनी गहराई से नहीं सोच सकते, उनको मोटी मोटी बात बताई जाती है। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो, हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है। समय क्या है? समीप है। तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है? बेहद का वैराग्य कहां तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है, आपके सेवा की सफलता है। जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब आप निमित आत्माओं में बेहद की वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य की वृत्ति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। एक तो हो बेहद का वैराग्य और सदा काल, सवेरे उठे अमृत वेला बेहद का वैराग्य, और फिर आदि में सारा दिन 23 घंटे 24 घंटे आदि में रहे, 10 मिनट 15 मिनट बाबा के रूम में गए तो बेहद, मेरा कोई नहीं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना, उसमें भी पता नहीं कितनी देर, बाकी सारा दिन हद में, मुरली पढ़ते हुए भी हद में, मुरली सुनते हुए भी हाथ में, तो फिर कैसे सेवा हो, कैसे उनके अंदर वैराग्य आए, हमारे संबंध संपर्क में आने वालों में कैसे वैराग्य आए। बेहद का वैराग्य और सदा काल का वैराग्य। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, समय प्रमाण आना, विचारों तरफ आग लग गई है, अच्छा ठीक, या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, वैरागी बन गए, शमशान भूमि में गई, वैरागी बन गए, तो समय नंबर वन हो गया ना, समय हमारे से आगे हो गया ना, और आप नंबर दो हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति या समय ऐसा आ गया कि आपको वैराग्य आ गया, तो समय ने दिलाया ना वैराग्य, परिस्थिति ने दिलाया ना वैराग्य। परिस्थिति खत्म, शमशान से बाहर निकले, समय पास हो गया वो, तो वैराग्य भी खत्म। बाबा रूम में बैठे थे, बहुत अच्छी क्लास सुनी थी, तो बाबा रूम में बैठे तो विराग आया, और फिर आए तो विराग खत्म, बाहर आते खत्म, खत्म। तो उसको क्या कहेंगे, बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित होता है, बेहद का वैराग्य नहीं रहता तो खंडित होता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। वे तो दुनिया में कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना, कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। देह भान किस में बदल जाए? देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है, देह ही आता है, चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, यह पदार्थ है तो देह का पदार्थ है, तो मूल बात देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है, तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा है कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है देह के जो पुराने संस्कार हैं, उससे वैराग्य नहीं हुआ। पुरानी जो आदतें है ना, अभी तक उन आदतों को नहीं छोड़ा। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार हमारी आदतें हमें उस स्वामान की स्थिति से नीचे ले आते हैं, देह में ले आते हैं ना। संस्कार के कारण सेवा में वा संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते। सेवा में संस्कार संबंध में संबंध संपर्क में क्या पड़ते हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है। सेवा में झगड़ा हो जाएगा या संबंध संपर्क में झगड़ा हो जाएगा। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता, सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता, वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजोरिटी के पास किसी ना किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते, जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, पुराने संस्कार से वैराग्य संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते। हम चाहते नहीं है, परंतु वो संस्कार जो हमने अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया है वो फिर जागृत हो जाते। इमर्ज होना माना जागृत हो जाना। चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को अभी तक भस्म नहीं किया। कहां न कहां अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वे समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है, ये कौन बोलता है? बोलेगी तो आत्मा, परंतु कौन बोलता है? ये देह अभिमान बोलता है। आत्मा अभिमान में नहीं, ये देह अभिमान बोलता है। क्योंकि आत्मा समझा होता तो ऐसे बोल नहीं सकते। आत्मा नहीं बोल सकते, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपने आप को क्या करो, आत्म अभिमानी बना। बहुत अच्छा, मतलब जो परसों की मुरली में था वरदान के रूप में, क्या था वरदान? आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। और उसको बहुत क्लियर समझाने के लिए दिया कि सवेरे सवेरे बेशक आप याद में बैठते हैं, परंतु उस समय आपकी बुद्धि सेवा की चलती है। आप सेवा सोच रहे हैं, आपने आत्म अवस्था में रहने का अभ्यास नहीं किया है। वो अंत समय जो एक सेकंड का होगा, उस समय भी आप सेवा की सोचेंगे। आपने सेवा के लिए सोचा तो आप वापस आत्मिक स्थिति में तो नहीं थे ना। तो आत्मिक स्थिति में नहीं थे तो साकार अवस्था में थे, साकार अवस्था में थे तो देह भान था, तभी तो देह भान में अन्य आत्माओं को भी सेवा के लिए सोचा। तो आपको उस सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, एक सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, परंतु ये अभ्यास नहीं है तो आप लास्ट पेपर में फेल हो जाए। इसलिए देही अभिमानी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का, आत्मिक स्मृति में, केवल आत्मिक स्मृति का मतलब है अपने आप को इस अवस्था में ले जाना जहां संकल्प भी ना आए, जहां संकल्प मिनिमम, बस मैं आत्मा हूं, ना घर का संकल्प आए, ना कोई सामान का संकल्प आए, ना दुनिया की किसी वस्तु का संकल्प आए, ना सेवा का संकल्प, केवल अपनी स्व स्मृति में रहना। हां जी,
संकल्प तो आएंगे तो कैसे
होता, इतने स्लो हो जाएं, क्योंकि हम शून्य, संकल्प शून्य तो नहीं हो सकते, वो तो ला ही नहीं है कि कोई संकल्प शून्य हो जाए, परंतु हमें केवल आत्मा का ही संकल्प है कि मैं आत्मा में क्या गुण है और परमात्मा में क्या गुण है, और मेरे ऊपर देह का कोई प्रभाव ना हो, स्वयं के गुणों की स्मृति हो, परमात्मा के गुणों की स्मृति हो, इस देह की स्मृति ना हो। और ये उस समय करनी है, पहले तो अभ्यास करना है एकांत में, फिर उस समय भी चाहिए जब ये शरीर जल रहा हो, जब हम एकांत में अपने आप को कुछ समय के लिए आत्मिक स्थिति में लाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बाबा कहते पहले एक सेकंड के लिए भी करके देखो, फिर वो दो सेकंड भी होगा, सेकंड मतलब मिनट नहीं कहा, पहले सेकंड का अनुभव करो और फिर वो दो सेकंड, तीन सेकंड भी होगा, परंतु शुरुआत तो करें। बीच बीच में रुककर मैं इस देह से अलग आत्मा हूं, चलते चलते रुककर देह से अलग मैं आत्मा हूं, मतलब एक सेकंड के लिए तो हम अनुभव करें ना। काम करते करते शरीर में दर्द हो रहा है, मैं इस देह से अलग आत्मा हूं, दर्द से भी अलग, खुशी से भी अलग, खुशी से भी अलग, क्योंकि खुशी के टाइम पे ही पेपर आ जाए, दुख के टाइम पर पेपर आ जाए, दर्द आ रहा है और आप दर्द में दुखी हो, क्या करूं, पता नहीं कहां बैठा है भगवान, मेरे को छुड़ाता नहीं, इस फंसा रखा है मेरे को, शिकायत है आएगी ना, दर्द की फीलिंग होगी तो कंप्लेन आएगी, देह अभिमान आएगा, मतलब हर समय कर सकते हैं, परंतु पहले अपने आप को एक सेकंड के लिए एकांत में बैठकर अनुभव करो, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, टाइम नहीं काउंट करना, केवल समझना है। कहीं आप गिनने बैठ जाओ जी एक सेकंड तो हो गया, अब दो सेकंड हो गया, तो हम अभी नहीं हुए, हम अभी नहीं हुए, मतलब ये केवल अपने अंदर अनुभव करना है कि मैं इस देह से अलग आत्मा हूँ।
उस में पीड़ा हो रही है,
हाँ जी हाँ जी,
अलग हो ही नहीं सकता, उसका तो ज्ञान नहीं पर है
भाई जी, नहीं हो सकता, भाई जी नहीं हो सकता, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ये बात समझ में नहीं आई, आप हो सकते हो परंतु आप समझ सके तब, क्योंकि ये अभ्यास पर निर्भर करेगा। बहुत सिंपल सी बात समझो, समझना क्या है, पहले जब आपको दर्द नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बाबा कहते उस समय इस अभ्यास की शुरुआत करो। क्योंकि जैसे कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो खाली जगह पर सीखता है, परंतु जब सीख जाता है तो भीड़ में चलाता है, खाली जगह पर नहीं चलाता। अभी पहले सीखना है थोड़ी देर भी बैठ करके कि मैं इस देह से अलग आत्मा हूं, एक सेकंड, दो सेकंड, कितनी देर तक आप रुक पाओ, अपने आप को रोको। आपको कोई संकल्प ना आए, संकल्प तो आएंगे, संकल्प ना आए मैं कह रहा हूं, संकल्प ना आए ऐसा हो नहीं सकता, पर तू ये भी नहीं सोचना कि मुझे संकल्प नहीं आए, क्योंकि ये सोचना भी संकल्प आना हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने आप को एकदम इस देह से अलग अनुभव कर, मतलब इस देह की भूख, प्यास, दर्द कोई भी उस समय आपको आभास ना हो। उसके लिए बाबा कहते साक्षी दृष्टा भी बनकर देख सकते हैं कि मैं इस देह से अलग हूं और इस देह को दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर उस दर्द का प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये भी साक्षी होकर देख सकते हैं कि मेरी श्वास चल रही है, जिसको मेडिटेशन में दुनिया वाले कराते हैं, परंतु उसको देखते देखते आप उस श्वास के आने और जाने को भी भूल जाए। मतलब कहीं से भी अपने संकल्पों को रोकना और फिर रोकने के बाद उससे भी अलग हो जाना, मतलब आप केवल आत्मिक स्मृति में है, आपके श्वास चल रहे हैं जैसे नहीं पता होता, ऐसे पता करके फिर उससे भी भूल जाए। क्योंकि हम देखते रहते श्वास आ रहा है श्वास जा रहा है, तो हम फिर भी देह भान में हैं, देह अभिमान में हैं, हम आत्म अभिमानी नहीं है। मतलब कोई भी काम करते करते संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को रोकना है, जिसको बाबा देही देही अभिमान। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, क्योंकि संस्कार मेरे ही अंदर है, आत्मा के अंदर है, वही संस्कार आ गया तो वृत्ति में कमजोरी है। वैराग्य वृत्ति में क्या है, कमजोरी है, खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश फिर क्या बन जाता है, वंश बन जाता है, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही, आज अंश है समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल है, कहने में तो कहते हैं, जो कुछ बाबा को पता है वो हमें पता है, बाबा ने सारा कुछ बता दिया, ये मुरलियां तो हैं, पूछ लो मुरली में से कौन सी बात मैं बता दूं। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है, फुल की जगह क्या लगा दिया, पुल, पुल समझते हैं ना, हाँ हाँ, पुल का काम क्या होता है, जोड़ना, पुल का काम होता है जोड़ना। आप संगम पर खड़े हो गए, नर्क और स्वर्ग को जोड़ने वाले बन गए, देह भान और देही अभिमान को जोड़ने वाले बन गए, मतलब कोई भी कमी नहीं है, पूरे एकदम पुल, नॉलेज फुल का मतलब कंप्लीट, जिसके बाद कुछ बचा नहीं, परंतु पुल का मतलब है इधर वाली भी बात हमें पता है, इधर वाली बात पता है, मर्जी आई इधर वाले इधर चले गए, मर्जी आई उधर चले गए। क्या है पूछ रहे हैं बाबा, नॉलेज फुल के बजाय नॉलेज फुल बन जाते हो उस समय, किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, अब क्या आ गया, समझती तो मैं भी हूँ परंतु इधर वाला भी तो है ना, दोनों तरफ आ गए ना। समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन भाई दोनों नर्क और स्वर्ग दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? हाँ, नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की खींचने वाले, नॉलेज को खींचने वाले। तो जो नॉलेजफुल नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद का वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएंगे। तो बाबा कहते समय आपका टीचर है, समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? तो आपने तो समय को बना दिया ना, कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है, ये ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो, क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, चिंता नहीं करो बाबा, कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा बाबा, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, शोभता है, अच्छा लगता है। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने या मास्टर रचयिता की शोभा बने? शोभा तो नहीं है ना ये, मास्टर रचयिता की शोभा। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, किसको इमर्ज करो? वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। ये भी सेवा करूं, वो भी सेवा करूं, उधर भी करूं, उधर भी करूं, तो क्या होगा? सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म। क्या कहता हूं? बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। क्या आ जाता है? ये मेरी सेवा है, इतना बड़ा काम मैंने कर दिया, और कोई कर सका? सारा ऐसे ऊपर जाके नीचे। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे के और थे, आप ही हैं, आप ही हैं ना, सिर्फ मर्ज है, दबा हुआ है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रतिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्द नहीं हो, बेहद की के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, ये मर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी, प्रकृति क्या बन जाएगी, आपकी दासी होगी। सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति काम नहीं हो, वैराग्य वृत्ति काम नहीं हो, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, कि भी सेवा कितनी करते हैं, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी, जब आदि हुई, शुरुआत हुई, तो सभी की स्थिति क्या थी, कराची में जब थे बाहर की कोई सेवाएं नहीं थी, कहीं किसी को प्रदर्शनी समझाने जाना है, किसी को कुछ समझाने नहीं थी, साधन थे लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया, सेवा को बढ़ाया। तो जो डायमंड जुबली वाले हैं उन्होंने आदि संस्कार है, डायमंड जुबली वाले मतलब, क्योंकि डायमंड जुबली मनाई जा रही है जो 60 साल, जो 60 साल से ज्ञान में चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने आदि संस्कार हैं, अब मर्ज हो गए, अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की, अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना, क्या जरूरत है, साधन ही नहीं है, और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा। जैसे और एग्जांपल दिया जाता है कि किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, कह जी मैंने तो व्रत रखा हुआ है, उसे व्रत नहीं कहेगा। साधन हो और वैराग्य हो, साधन हो और क्या हो, वैराग्य। खाना रखा हुआ है परंतु मुझे आज खाना नहीं खाना है, तो व्रत है। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है, साधना छिप गई है, साधन इतने हो गए हैं कि साधना उसके पीछे छिप गई है, और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, साधनों को यूज करो, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए, जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो, साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है, वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन में प्रवृत्ति है, ऐसे तो नहीं कि साधन के साथ प्रवृत्ति है। साधनों के वश फंस तो नहीं जाते हैं। प्रवृत्ति माना जुड़ना, प्रवृत्ति माना जुड़ना, साथ में होना, कि साधन के बिना मैं कैसे करूं। कमल पुष्प समान न्यारे और व्याप बाप के प्यारे, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं है। अगले पल मोबाइल नहीं हो तो माथा खराब नहीं हो। मोबाइल होता तो मैं फोन कर लेता, मैं उसको बता देता, अब मैं क्या करूं। नहीं, ठीक है, इसी में किसको बताना, बताने की जरूरत क्या है, बताने की जरूरत ही क्या है। शरीर ही तो छोड़ना है ना, छोड़ दो। हमारा शरीर से क्या मतलब, शरीर को कीड़े तो नहीं खाएंगे, खा ले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कुत्ते खाए तो खा ले, मेरे को क्या मतलब। मुझे शरीर छोड़ना है, छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम फोन याद आया, उस टाइम शरीर को कौन खाएगा ये याद आया। शरीर को तो आग ने जलाना है ना, कोई खाए जलाए जो मर्जी हो, संकल्प क्यों आए एकदम। हां जी,
हाँ,
तभी तो दुख होगा, तब तो भागेंगे, रोएंगे, डर तो बढ़ेगा ना। डर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उस समय की परिस्थितियों को सोचकर अभी से अपने आपको भय से मुक्त करो, क्योंकि अभी से समझाया हुआ होगा तो उस सेकंड भय से मुक्त हो सकेंगे। यदि अभी से समझाया नहीं होगा, मन मना भाव किया नहीं होगा, तो उस समय भय से मुक्त नहीं हुए तो भय में शरीर छूटेगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी विश्व अति में जा रहा है, सारा संसार अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की। ये देश भी मेरे अधीन हो, ये देश भी मेरे अधीन हो, अब मेरे अधीन मैं सारे विश्व का राजा बन जाऊं, मेरे पास इतने एटम बम्स हैं, इतने ये हैं। सच्चे वैराग्य वृत्ति की और वे वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में, तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे, लहर फैलाएंगे ना, लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हो, आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था। देसी घी खाओ जितना खा सकते हो, देसी घी खाओ जितना खा सकते हो, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति, मतलब नहीं है तो रोटी घर से अंदर जाए, नहीं ठीक। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो देसी घी वो खाते हैं, आप पीते हो। हाँ, घी की नदियां देखी, तो डायमंड जुबली वालों का तो विशेष काम करना है, आपस में इकट्ठे होते हो तो रू रिहान करना है। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी मीटिंग करो, जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं, सेकंड में अशरीरी हो जाए। उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है, नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। लास्ट में ये भी युद्ध आ गया कि छोड़ूं कि ना छोड़ूं, छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं शरीर छूटा तो भी अटैचमेंट। युद्ध में ही चले जाएंगे, और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको अब घर। अच्छा समझा क्या करना है, समझा क्या करना है, सहज है या मुश्किल है? थोड़ा आकर्षण तो, थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, साधन अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, अभी अभ्यास चाहिए, अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ये नहीं कि सेवा नहीं है तो अब क्या करूं, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे कि मैं जाके वहां सेवा करूं। सेवा के बिना रह नहीं सके, जब चाहे जैसे चाहे, विल पावर चाहिए, विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप नहीं फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रतिकल में कर सके, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, होना मुश्किल है। तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में व्यर्थ क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि बाप, कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं लेकिन योग की बजाय युद्ध में होते हैं, योगी नहीं होते हैं, योद्धे होते हैं, और युद्ध करने का अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी बनेंगे? सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है, इसको कहते हैं विल पावर। की प्लान बहुत अच्छे बनाते लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5, ऐसे तो नहीं होता। प्लानिंग किया परंतु पूरे 5 हुए, 5 तो छोड़ दिए। सोचते बहुत अच्छा है, ये करेंगे, ये होगा, वो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ, हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो, नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रूह रूहान करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बाबा ये करेंगे ये करेंगे। जब रात होती है तो क्या रिजल्ट, क्या रिजल्ट होती है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है, वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना बस होना ही है, वही पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, बाबा कल्प कल्प हम ही बन, हम ही तो थे, खुश हो जाते हैं। हाल में पीछे बैठने वालों से, पीछे बैठने वाले अच्छी तरफ अच्छी तरह से सुन रहे हो ना, आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे, बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो, क्यों? दूसरों को चांस देना ये सेवा की ना, ये सेवा की ना, तो सेवाधारी बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियां होती ना, हम भी अगर दादियां होती ना तो जरा सा भी गलती, लेकिन सामने तो क्या, दिल पर हो, दिल भी साधारण नहीं है, दिल भी साधारण नहीं। तो दिल तख्त नशीन है ना, कहां भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे कैबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाली विशेष आत्माएं सदा एक बात के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाली आत्माएं सबको जो ऐसा करती है, अनुभव करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। वरदान, एक व्रत के राज को जान, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे ही वरदान मिलते जाएंगे। वरदाता बाप के पास अखुट वरदान है, अब जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि को जान लो तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, कौन सा है वो शब्द? एक व्रता, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ने, बस जो मैंने कहा वही उसके संकल्प में आए, किसी दूसरे के विचार दूसरे की बात उसके कानों में नहीं पड़ी। वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा ना कोई, जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से क्या रहेगी, भरपूर रहती है। स्लोगन है मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होगा होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।